તારીખ 13/9/1991 શ્રી સમયસાર ગાથા 181-183 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું હૈદરાબાદમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 21 મૂળ કેસેટમાં અવાજ ધીમો છે તથા હમિંગ છે.
राग साम्य भाव स्वरूप है, निर्दोष पवित्रता पूर्ण और अकषाय स्वरूप ये धर्म के अनेक गुण है. अनंत गुण शुद्ध परिणमते हैं तभी ही धर्म होता है. प्रथम ही धर्म चतुर्थ गुण स्थान में सर्वगुणांश सम्यक्त्व रूप होता है, तो उसमें आत्मा के अनंत सर्वगुण सर्व अनंत गुण शुद्धता को प्राप्त होता है. उसमें शुद्धता आती है परिणमन में, तभी से धर्म की शुरुआत होती है. अनंत धर्म वाणी में तो आ ही नहीं सकता, इसलिए कितने धर्म का विवरण जो वचन गोचर है उसका शास्त्र में करने में आया है. उसमें से भी धर्म का 10 लक्षण 10 प्रकार 10 गुण कहने में आता है इन पर्व के दिनों में. तो आज का जो विवरण है वो उत्तम क्षमा धर्म का नाम है. धर्म के अनेक प्रकार नहीं है, लेकिन एक धर्म में अनेक पहलू है, अनेक गुण है, बहुत से गुण है, अनंत गुण है. ऐसा धर्म का स्वरूप अनंत गुण से अभेद रूप जानना चाहिए. उसमें से उत्तम क्षमा धर्म का विवरण चलेगा संक्षेप में. उत्तम का क्या अर्थ है कि उत्तम मैंने सम्यक, और उत्तम मैंने लोकोत्तर, उसको उत्तम कहते हैं. क्षमा शुभ भाव रूप भी होती है और क्षमा वितराग भाव रूप भी होती है. क्षमा 2 प्रकार की है, एक राग भाव रूप शुभ भाव रूप और एक वितराग भाव रूप. तो जो वितराग भाव रूप क्षमा है उसको उत्तम क्षमा यहाँ कहने में आई है. राग भाव रूप क्षमा को उत्तम क्षमा नहीं कहते, ये लौकिक क्षमा है. तो ये लौकिक क्षमा में यानी शुभ भाव रूप क्षमा में 2 भेद हैं मुख्यतया, कि एक को कोई दूसरा जीव हमारे प्रति क्रोध करे या कुछ भी प्रकार का अनुचित बर्ताव करे, उसके प्रति हम अनुचित बर्ताव या क्रोध नहीं करें और उसमें शांति रख करके क्षमा प्रदान करें कि ये इनकी गलती है. जब उनको अपनी गलती समझ में आ जाएगी तो वो इस प्रकार के अपने नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि नुकसान तो वो अपने आप को करता है. ऐसा समझ करके, ऐसा विचार करके इसके प्रति क्षमा भाव रखना, शांत भाव रखना, उसको भी शुभ भाव रूप क्षमा कहने में आती है. और हमारे परिणाम कुछ दूसरे व्यक्ति पर, कोई दूसरे जीव पर क्रोधादि के हो गए और हमें हमारी इस प्रकार के दोष का ख्याल जाने से हम उसकी माफी चाहें, माफी मांग लें, क्षमा याचना कर लें कि हमारी गलती हो गई, हमको क्षमा कर देना है। ऐसे अपनी ओर से क्षमा की याचना होना, ये भी शुभ भाव रूप एक क्षमा है। ये दोनों प्रकार की क्षमा तो सहज रूप से राग की भूमिका में उत्पन्न होती है या होनी भी चाहिए, जिससे कषाय की वृद्धि नहीं हो, कषाय रस तीव्र नहीं हो। लेकिन इसके आगे एक दूसरी भी बात है कि आत्म स्वभाव जो क्रोधादि कषाय रहित है, सभी प्रकार के कषाय रहित है, अकषाय स्वभाव है, ऐसा आत्म स्वभाव में स्थिर हो करके वितराग भाव रूप परिणमन कर देना अपने आत्मा का, और किसी भी प्रकार के विकल्प की उत्पत्ति ही नहीं होना, चाहे कोई कुछ भी करे, हमारे परिणाम साम्य भाव रूप वितराग भाव रूप शांत रहे, उसी को उत्तम क्षमा कहते हैं। जैन धर्म में मूल क्षमा का यही स्वरूप है। पहले जो बात कही वो दोनों प्रकार की क्षमा लोक में भी कई प्रकार के अन्य धर्म में या जैन धर्म में बन सकती है, लेकिन उत्तम क्षमा वितरागी भाव रूप जो क्षमा है, इसका प्रकरण केवल ही जैन धर्म में है। दूसरे संप्रदायों में ये बात नहीं जानते लोग, इतना फर्क है। इसी विषय पर संक्षेप में कुछ गुरुदेव श्री के प्रवचन का कुछ अंश हम पढ़ेंगे। हाँ, वो क्षमा में आता है। अपना दोष देख करके अपना दोष का अभाव का भाव उत्पन्न होता है, भावना होती है, तो ये भी एक क्षमा का प्रकार है। जो दूसरे में दो बात कही ने, एक तो दूसरे जीव का क्रोधादि दोष पर हमें क्षमा का विकल्प होवे, ये एक प्रकार, और हमारे दोष पर हमें पश्चाताप होवे और क्षमा की याचना होवे। देख करके तो होता है, बिना देख करके तो होवे ही कैसे, तो ये भी एक दूसरा प्रकार है। तो जहां तक ये विकल्प रूप है, राग रूप है, वहां तक उत्तम क्षमा उसको नहीं कहते। उत्तम क्षमा तो वितराग भाव का नाम है, साम्य भाव का नाम है, जिसमें राग का अंश नहीं है, केवल वितरागता ही है, उसको उत्तम क्षमा कहने में आता है। कौन सा भाव? हाँ, उसमें जितना भी कषाय रस मंद होने से मति श्रुत ज्ञान की निर्मलता होए, तो ज्ञानी पुरुष को पहचान होने में इतना अनुकूल पड़ता है। ज्ञानी पुरुष की पहचान होने का जहां तक सवाल है, मुद्दा है, उसमें अपना अस्ति से मति श्रुत ज्ञान की निर्मलता चाहिए और नास्ति से कषाय रस मंद होना चाहिए और नास्ति से दर्शन मोह का अनुभाग भी मंद होना चाहिए। बस उतनी मुमुक्षु की भूमिका में ज्ञानी पुरुष की पहचान होती है और आगे जाकर के आत्मस्वरूप की पहचान भी हो सकती है। अब तो ये विषय इधर नहीं है, विषय तो है उत्तम क्षमा का। आज का दिन जो है उस पर गुरुदेव क्या कहते हैं कि आज से 10 लक्षण पर्व शुरू होते हैं। पहला दिवस उत्तम क्षमा का दिवस के रूप में प्रचलित है और चारित्र दशा में जो वर्तते हैं ऐसे जो मुनिराज हैं, उस मुनियों को उत्तम क्षमादि 10 प्रकार के धर्म होते हैं। गुरुदेव का क्या कहना है कि ये जो पर्व है और उसमें जो क्षमा आदि नाम से विशेषता से जो धर्म का विवरण चलेगा वो तो मुख्यतया चारित्र प्रधानता की बात है। भगवान पद्मनंदी मुनिराज हैं, उसने अपने ग्रंथ में पंचविंशति का ग्रंथ में इसका वर्णन किया है, उसमें से उस पर से गुरुदेव ने प्रवचन किए हैं। जो प्रवचन का ये किताब है वो उस पद्मनंदी पंचविंशतिका के श्लोक पर चला है। और मुनिराज ने मुनि दशा में जो ये चारित्र है उस चारित्र धर्म के वितराग धर्म के साम्य धर्म के ये क्षमा आदि 10 लक्षण लिए हैं। ये इस बात की मर्यादा है, प्रस्तुत विषय की मर्यादा है। तो कहते हैं कि चारित्र दशा में वर्तने वाले मुनिराजों के उत्तम क्षमा आदि 10 प्रकार के धर्म होते हैं। ये उत्तम क्षमा चारित्र दशा में होते हैं और ये चारित्र मोक्ष का कारण होता है, क्योंकि ये वितराग चारित्र है, मुनि दशा का चारित्र है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान यह चारित्र का कारण है। मैंने आत्मा मा स्थिरत्व, आत्मा में स्थिर दशा उत्पन्न होने का कारण है, वितरागता का कारण है। सम्यक दर्शन ज्ञान को मोक्ष मार्ग कहना उपचार है, वास्तव में तो चारित्र ही मोक्ष मार्ग है ऐसा कहने का अभिप्राय है, क्योंकि जिसको सम्यक दर्शन ज्ञान होता है उसी को सम्यक चारित्र अवश्य प्रकट होता है और आगे जाकर के अल्पकाल में वो मुनि दशा को भी धारण करता है। इसलिए सम्यक दर्शन होते ही मोक्ष मार्ग कहने में आता है। वास्तव में तो जो मुख्य मोक्ष मार्ग है वो मुनि दशा से गिनने में आया है, चतुर्थ गुण स्थान से गौण रूप से गिनने में आता है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए चारित्र दशा में उत्तम क्षमा वगैरह 10 ही प्रकार गिनने में आता है और ये मोक्ष के आराधना का महोत्सव गिनने में आता है। आज का दिन उत्तम क्षमा दिन गिनने में आता है, कहने में आता है। सम्यक दर्शन बिना उत्तम क्षमा नहीं होती, क्योंकि सम्यक दर्शन बिना वितराग भाव का अंश भी प्रकट नहीं होता है। इसलिए जो क्षमा के परिणाम है वो राग भाव रूप है, उत्तम क्षमा रूप नहीं है। लौकिक में शुभ भाव को क्षमा कहने में आता है, उस शुभ भाव का निषेध करने के अभिप्राय से यहाँ उत्तम क्षमा ऐसा क्षमा को विशेषण लगाने में आया है। उत्तम क्षमा मैंने सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप क्षमा, उसको उत्तम क्षमा कहने में आता है। निश्चय से अपने स्वयं के आत्म स्वभाव त्रिकाल नायक मूर्ति है, उसकी पहचान और बहुमान करना और राग द्वेष क्रोधादि की रुचि छोड़ देना, वही उत्तम क्षमा की साची सच्ची आराधना है। और आत्म स्वभाव के अनादर करके पुण्य पाप की रुचि होना, देखिए गुरुदेव रुचि पूर्वक इस बात को लेते हैं, पुण्य पाप की रुचि होना वही क्रोध है, वो आत्म स्वरूप के प्रति क्रोध है। और आत्म स्वभाव का आदर करने से पुण्य पाप की रुचि छूट जाती है, उसी को ही प्रथम सम्यक दर्शन में उत्तम क्षमा आदि धर्म कहने में आता है। ऐसे धर्म की शुरुआत है वो सम्यक दर्शन पूर्वक होती है, उत्तम क्षमा की भी शुरुआत सम्यक दर्शन पूर्वक होती है, ऐसा गुरुदेव यहाँ प्रारंभ में ही फरमाते हैं। यहाँ तक रखें। आज से हम स्वाध्याय का प्रारंभ करेंगे। समय सार संवर अधिकार की गाथा 181-82 प्रारंभ की ये तीन गाथा है। आचार्य महाराज ने मांगलिक का श्लोक लिख करके इस गाथा की टीका शुरू की है। सूत्रकर्ता आचार्य की ये इस अधिकार की प्रथम तीन गाथा एक साथ है। गाथा का हेडिंग है कि यहां संवर अधिकार की शुरुआत में ही भगवान कुंदकुंद आचार्य सकल कर्म का संवर करने का उत्कृष्ट उपाय जो भेद विज्ञान है उसकी प्रशंसा करते हैं। क्या कहते हैं कि सूत्रकर्ता भगवान कुंदकुंद आचार्य है, ये संवर होने का जो उत्कृष्ट उपाय है, परम उपाय है, जिसको प्रचलित शब्द से भेद विज्ञान कहने में आया है, उस भेद विज्ञान की प्रशंसा करते हैं। यानी भेद विज्ञान कैसे होवे, किस रीति से होवे, किस विधि से होवे, ये विषय ये तीन गाथा में चलेगा। ये जो इतनी बात शुरुआत में कही उसमें यह स्पष्ट कह दिया कि संवर का उपाय भेद ज्ञान है। क्या कह दिया? संवर का उपाय भेद ज्ञान है। संवर की परिभाषा तीन प्रकार से कहने में आती है, अस्ति से, नास्ति से, वो उपादान परक है, और एक निमित्त परक है जो कर्म का संवर होता है, वो निमित्त परक है। तो नया कर्म का आश्रव रुक जाए, नया कर्म आने का बंद हो जाए, उसी को कर्म का संवर हुआ ऐसा कहने में आता है। ये निमित्त प्रधान परिभाषा है संवर की। उपादान में अस्ति से लेवे तो अपना शुद्ध स्वभाव प्रकट होवे, धर्म प्रकट होवे, उसी को संवर कहते हैं। और जब धर्म प्रकट होता है उसी काल में भाव कर्म का जो आना है, आश्रव जिसको कहते हैं, वो रुक जाता है। वीतराग भाव रूप धर्म प्रकट होने से, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म प्रकट होने से, रागादि कषाय भाव का की उत्पत्ति होना, जिसको आश्रव कहते हैं, आश्रव मैंने आना, तो आगमन को आश्रव कहते हैं, वो आगमन बंद हो जाता है, सम्यक प्रकार से उत्पत्ति ही नहीं होती है, उसी को नास्ति से संवर कहने में आता है। ऐसे संवर में, एक संवर शब्द में ये तीनों बात समझ लेनी चाहिए। और ये संवर ही धर्म है। संवर क्या है? धर्म है। तो ये धर्म के आराधना के पर्व है, ये 10 दिन है। वो धर्म की आराधना का जब पर्व है तो ये धर्म क्या चीज है और किस विधि से, किस रीति से इसकी उत्पत्ति होती है, इसका स्वाध्याय हम इस अधिकार में से 10 दिन तक सुबह सुबह इसी परमागम में से करेंगे, इसी अधिकार में से लेंगे। तो ये तीन गाथाएं हैं। उभोगे उभोग कोहादिसु नथी कोवि उभोग, कोहे कोहे कोहो कोहे चेवही ओगे नथी खलू कोहो अठा व्यप्पे कम्मे नो कम्मे चावी नथी ओग ओ गम्मीय कम्मम नो कम्मम चावी नो अथी एम थू ओ विवरीदम नानुम जैया चावीनो जैयादु होदी जीवस तैया न किंचिम कुबदी भावम ओग सुधप्पा गाथा जे हरीत मा छे बदा साथे बोलसो उपयोग उपयोग में है बहुत सादी सीधी बात है। ऐसे तो ये महान परमागम है और महान आचार्यों की ये रचना अपने छठवीं सातवीं गुणस्थान की वितराग भाव की उच्च कोटि की भूमिका में स्वसंवेदन की प्रचुर अवस्था में रह करके ये रचना हुई है, इसलिए आचार्यों की भाषा विद्वत्ता पूर्ण तो होती ही है, फिर भी विषय का प्रतिपादन बहुत सुगमता से यहाँ पर किया गया है कि देखिए उपयोग उपयोग में है, इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा ऐसी बात है। उपयोग मैंने ज्ञान का व्यापार, जो हम जानते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम जानते हैं, उसको शास्त्रीय परिभाषा में उपयोग कहने में आता है। चालू भाषा में हम कहेंगे कि हम जानते हैं, और शास्त्रीय परिभाषा में उसको उपयोग ऐसा शब्द कहते हैं। उपयोग मैंने जानने का एक कार्य है, वो जानने के कार्य में है उसमें कौन सी अटपटी बात है, कौन सी कोई नहीं समझ में आवे ऐसी बात है, बहुत सरल शैली है आचार्य महाराज की। कहीं पर कोई शास्त्रीय परिभाषा शास्त्रीय शब्द और कोई शैली उच्च कोटि की आएगी, हम उसको सरल करने का प्रयास करेंगे। लेकिन देखिए पहले वचन हमने लिया गाथा का अर्थ का, तो उपयोग उपयोग में है, मैंने जानने का कार्य जो है वो अपने कार्य में है, उसमें कोई नहीं समझ में आवे ऐसी बात हो तो हम विचार करें उस पर कि हम जानते हैं ऐसा जो एक कार्य हमारी आत्मा में बनता है चलता है वो कार्य अपने आप में है। जानने का कार्य जानने के कार्य में है, उपयोग उपयोग में है, उतना सीधी सादी बात है। वो है परमागम, धर्म का विषय सूक्ष्म तो अवश्य है ही, क्योंकि आत्मा ही सूक्ष्म स्वरूपी है। ये घटपट आदि पदार्थ जैसे वो दिखने में आता है ऐसा कोई स्थूल नहीं है, आत्मा स्वयं ही सूक्ष्म स्वरूपी है और इसका धर्म भी स्वरूप से तो सूक्ष्म है ही, क्योंकि ये इसकी विशेषता है आत्मा की, धर्म ये इसकी विशेषता है। तो हमें जब धर्म की प्राप्ति करनी ही है और हमारी धर्म प्राप्ति की भावना ही है तो हमें सूक्ष्मताकार विषय में कहीं भी अरुचि नहीं होनी चाहिए। हमें रुचि से, भावना से, जिज्ञासा से, उत्सुकता से सूक्ष्म भावों को, सूक्ष्म विषय को समझने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास करने से ये बात समझ में अवश्य आती ही है। सूक्ष्म बातें कहां तक नहीं समझ में आती इसका यदि हम विचार करें तो जहां तक हमारी समझने की रुचि नहीं होती है वहां तक वो समझने में नहीं आती। जब हमारी मानसिक भूमिका में हमको रुचि हो गई कि नहीं हमको ये समझना ही है, हमारी भावना है कि कोई कितना भी सूक्ष्म विषय आ जाए हम समझने का प्रयास करेंगे, तो उसी वक्त पात्रता का अंश प्रकट होता है। ऐसी भावना के काल में पात्रता का अंश प्रकट होता है और ज्ञान में समझने की योग्यता आने लगती है। ऐसा ही एक वैज्ञानिक परिस्थिति होती है। इसलिए श्रीमद् राजचंद्र जी ने अपने 105 नंबर के पत्र में ये बात कही कि पात्रता और भगवान महावीर का बोध का ग्रहण करने का कौन पात्रता वाला है, कौन अधिकारी है, कि जो सदैव मैंने हमेशा सूक्ष्म बोध की अभिलाषा रखता है, सूक्ष्म बोध के विषय की रुचि रखता है, जिज्ञासा रखता है, अभिलाषा रखता है, उसी को भगवान महावीर का बोध की प्राप्ति होती है। ऐसी पात्रता जिसको नहीं है वो बोध के पात्र नहीं है, अधिकारी नहीं है, ये बात इसमें आती है। तो इसलिए बात सूक्ष्म तो धर्म की होती ही है, क्योंकि आत्मा ही सूक्ष्म है तो इसका धर्म की बात तो सूक्ष्म ही होगी। लेकिन आचार्य महाराज ने और ज्ञानियों ने बहुत करुणा करके इस विषय को सरल और सुगम भी बनाया है, तो हम जितना भी सरल होगा, सुगम हो सकता हो सकेगा, वैसे ही उस पद्धति से उसको समझने की कोशिश करेंगे, विचारने की कोशिश करेंगे। उपयोग उपयोग में है, मैंने जानने का कार्य तो जानने के कार्य में है, इसमें कोई नहीं समझ में आवे ऐसी बात नहीं है। और क्रोधादिक में कोई उपयोग नहीं है, क्या कहते हैं, क्रोध आदिक मैंने, क्रोध राग मान माया आदिक मैंने सभी प्रकार के विभाव परिणाम, सभी प्रकार के विकारी जो परिणाम है उसमें ज्ञान मैंने, उपयोग मैंने, जानने का कार्य नहीं है। क्या कहना चाहते हैं आचार्य महाराज, कि जीव के परिणाम में एक जानने का कार्य होता है, उसमें सिर्फ जानने का ही होता है, और दूसरा राग क्रोध आदि भिन्न भिन्न प्रकार के विभाव और विकार परिणाम होता है, जिसमें जानने का स्वभाव नहीं है। उपयोग मैंने जानना, कि क्रोधादिक में कोई उपयोग नहीं है, तो इधर हमें थोड़ा अनुभव पद्धति से विचार करना है इस बात पर कि हमारे अनुभव में जानना ऐसा भाव अनुभव में आता है क्या। हम तलाश करें, हमारे अनुभव की हम तलाश करें, उसकी जांच करें, उसका अवलोकन करे। अवलोकन मैंने इधर ऑब्जर्वेशन, कि जानने का कार्य अवश्य होता है हमारा। अच्छा, अनेक प्रकार के राग क्रोध आदि विभाव परिणाम भी हमारे में होता है। सरल और सुगम करके यहां प्रस्तुत है कि हर जीव को जानने का कार्य हर हमेश होता है तो होता है। हर जीव को राग द्वेष मोह अनेक प्रकार के विभाव परिणाम विकारी परिणाम हर हमेश होता है तो होता है। एक ज्ञान गुण के परिणाम है, दूसरे चारित्र गुण के परिणाम है, और दोनों परिणाम हर हमेश चालू रहते हैं सभी जीव को। तो हमारे अनुभव में ये दोनों प्रकार के परिणाम का अनुभव कैसे होता है, उसको हमें आचार्य महाराज के प्रतिपादन के साथ मिलान करना है। हमें क्या करना है, इस गाथा का स्वाध्याय करके हमें क्या करना है। कहने का अभिप्राय यह है कि हमें सिर्फ शब्द का अर्थ ही जान लेना है, या हमें इस शब्द जो वाचक है उसके वाच्य जो हमारे परिणाम है इसका अनुभव तक पहुंचना है। क्या अभिप्राय कहने का है। स्वाध्याय दो तरह होता है, एक तो शब्दार्थ भावार्थ नयार्थ मतार्थ आदि सब प्रकार जो विद्वान लोगों के समझ में आता है सब बात, कि इसका शब्दार्थ क्या है, इसका भावार्थ क्या है, कौन से नई का ये वचन है, इसका नयार्थ क्या होता है, अन्य मत से उसका क्या संबंध है, उसको नयार्थ कहते हैं, किस मत में ऐसी बात आती है, उसमें क्या गलती होती है, जैन दर्शन में क्या इसमें फर्क पड़ता है, उसको मतार्थ कहते हैं, और किस किस आगम में ऐसी बात आई है उसको आगमार्थ कहते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के अर्थ के विवेचन विद्वान लोग करते हैं। इसके अलावा भी एक रहस्यार्थ है। क्या है, एक रहस्यार्थ है कि इतना जो आगे बोला उतना अर्थ तो विद्वान लोग कर सकते हैं, लेकिन रहस्यार्थ है वो विद्वान नहीं होवे तो भी कर सकता है और विद्वान होवे तो भी कर सकता है। क्या बात है, रहस्यार्थ जिसको कहते हैं। रहस्य मैंने क्या, रहस्य मैंने मर्म, तो मर्म मैंने क्या, कि मर्म मैंने मेरे परिणाम में इस विषय मुझे लागू करने पर मेरा हित और अहित की मुझे सूझबूझ होवे, इस प्रकार की समझ आवे, उसको रहस्य कहते हैं, मर्म कहते हैं। ऐसा एक प्रकार स्वाध्याय में उत्पन्न होना चाहिए। तो जहां तक हमारा स्वाध्याय का संबंध है और जहां तक हमारा स्वाध्याय के काल का संबंध है, मैंने जैसे गुलाब भाई है उनको तो ये वारसा में ये चीज मिली है, क्या कहते हैं हिंदी में, वारसा ही कहते हैं, है? पिताजी के उत्तराधिकारी जो होते हैं, वारिस जिसको बोलते हैं, वारिस लावारिस ऐसे कहते हैं ना, मुझे तो मिले थे छगन भाई, जानता हूं मैं अच्छी तरह, बहुत प्रेम था मेरे साथ उनका, तो उनको तो पिताजी की ओर से मिले हैं। ये जो कामदार भाई जो सब बैठे हैं उनके भी पिताजी को जानता हूं मैं, दिलजीवन भाई को, उन लोगों को भी वारसा में मिली हैं। और कई लोगों को करीब करीब वारसा में मिली है। तो हमने इतने काल तक स्वाध्याय किया, इसमें शब्दार्थ भी जाने समय सार में से कई गाथाओं के, भावार्थ भी जाना, और अनेक प्रकार के जहां तक जितना क्षोभम हो, विकास हो, ज्ञान का उघाड़ हो, उतना हम जानने को मिलता है। लेकिन उघाड़ कम होता है तो भी मनुष्य प्राणी को, संघनी प्राणी को, अपना मतलब की बात, प्रयोजन की बात तो हर एक को समझ में आती ही है। अनपढ़ लोगों को भी अपना मतलब की और प्रयोजन की बात तो समझ में आती ही है। ये आजीविका का व्यवहार जो है वो कैसे चलता है, मतलब से चलता है कि नहीं चलता है, उसमें सब पढ़े लिखे तो नहीं है। हमारे यहाँ तो ये निरक्षरता को साक्षरता करने का अभियान चलता है सारे देश में इन दिनों में, तो पेपर में आता है कि नहीं आता है। तो हमारी तो प्रजा ही बहुत भाग, मेजोरिटी अनपढ़ है, फिर भी सबका चलता है कि किस पर चलता है कि प्रयोजन के विषय में हर जीव जो है, हर मनुष्य है, भले पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, बराबर काम कर लेता है अपना। तो हमें भी यही देखना है, धर्म का विषय में प्रयोजन कौन सा है। लंबी चौड़ी बात हम शास्त्रों की नहीं विचार करें तो भी धर्म के क्षेत्र में प्रयोजन क्या है कि हमें सुख शांति मिले, हमारे आत्मा को, हमारी आत्मा में से आत्मा की सुख शांति मिले, उतना ही प्रयोजन है। और इसका विज्ञान परिज्ञान ये शास्त्रों में अनुभव पद्धति से, अनुभव पूर्ण वचनों में अनुभवी महात्माओं ने लिखा है, जिसका हम अगर अनुभव पद्धति से विचार नहीं करे, समझने की कोशिश नहीं करे, तो ये शब्दार्थ, भावार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, ये सब हो जाएगा, रहस्यार्थ उसका नहीं मिलेगा, मर्म नहीं मिलेगा। श्रीमद् राजचंद्र जी कहते हैं कि शास्त्र में मार्ग तो कहा है लेकिन मर्म ज्ञानियों के हृदय में रहता है। इसका मतलब क्या कि ये चीज ऐसी है कि लिखने में उसकी बहुत मर्यादा बंध जाती है, बोलने में ये बात कुछ अधिक तौर से व्यक्त होती है, प्रकट होती है। तो ज्ञानी के सत्समागम में इस बात को अधिक तौर से समझने का मौका मिलता है। पढ़ने में क्षोभम जितना पढ़ सकते हैं, फिर भी कहीं गलती होवे तो शास्त्र ये नहीं कहेगा कि तुम्हारा ये समझने में गलती हो गया। जब सत्समागम में समझने में गलती होगा तो श्री गुरु कहेंगे कि ऐसी बात नहीं है, वो ऐसी बात है, तो हमारी गलती निकल जाएगी। इतना फर्क रहता है प्रत्यक्ष सतगुरु के योग में और शास्त्र के अध्ययन में, इतना फर्क है। तो हमारा स्वाध्याय का ढंग यानी पद्धति इस प्रकार से होनी चाहिए कि हमें रहस्य समझने में आवे, मर्म समझने में आवे, और हमारा हित अहित के साथ इसका मिलान होता रहे। अब इतनी बात है कि जानने का कार्य जो उपयोग है वो ज्ञान में ही रहता है, उपयोग में ही रहता है, क्रोध में नहीं होता है। अब हमारी पद्धति से हम विचार करें कि हमको ऐसा अनुभव में आता है क्या, दोनों परिणाम हमारा चल रहा है, उपयोग का भी हमारा कार्य चल रहा है और रागादि विभाव परिणाम का भी कार्य चल रहा है। हमारा अनुभव क्या बोलता है, ज्ञान में क्रोधादि में ज्ञान नहीं है ऐसा हमारा अनुभव बोलता है क्या? जो नहीं बोलता है तो आचार्य महाराज कहते हैं उसी के अनुकूल हमारा अनुभव होवे, ऐसा कुछ प्रयास हमको होना चाहिए। किस तरह कि समझ में तो बात आ जाती है कि ज्ञान में ज्ञान ही है, क्रोध में ज्ञान नहीं है। जब क्रोध में ज्ञान नहीं है, मैंने दो भिन्न भिन्न है, तो हमको ये भिन्न भिन्न रूप अनुभव में क्यों नहीं आता है? समझ में आता है तो अनुभव में क्यों नहीं आता है? हमें जो कुछ कार्य करना है ये इस जगह करना है, इस पर कितनी भी चर्चा हो सकती है, हमारी परिस्थिति क्या है उसका विचार करें कि हमको क्रोध रूप ही हमारा स्वरूप अनुभव में आता है, यानी रागादि भाव रूप। जिस काल में जिस जिस प्रकार का विभाव होता है ऐसा परिणाम करने वाला में, पूजा करते वक्त में पूजा करने वाला और दुकान धंधा करते वक्त में दुकानदार में व्यापार करने वाला क्या अनुभव में आता है? हम ज्ञान को भूल जाते हैं, राग के साथ हमारा एकत्व पूर्ण अनुभव इतना घनिष्ठ चलता है कि ज्ञान जानने रूप अनुभव में चल रहा है तो भी हम जानने वाले हैं ऐसा अनुभव हमको होता ही नहीं, जानने का अनुभव खो जाता है। क्या होता है इस परिस्थिति में हम खड़े हैं उसकी आचार्य महाराज की खबर है, पता है कि संसारी जीव कैसे परिणाम से परिणमन कर रहा है, कि रागादि विभाव में तन्मय होकर के लीन होकर के अपने आप को पूरा रागमय अनुभव कर रहा है, उसको ज्ञान का परिणमन होते हुआ भी ज्ञानमयता उसको अनुभव में नहीं है, ये अच्छी तरह आचार्य महाराज जानता है। तो आचार्य महाराज ने करुणा करके ये बात कही कि देख भाई, तेरा अनुभव की तू तलाश तो कर, विचार करने क्या बात है? विचार तो बहुत काल तक हमने किया, पढ़ा भी बहुत, विचार भी बहुत किया है, लेकिन हमने हमारे परिणाम की तलाश नहीं की। उसमें क्या अंतर है दो बात में? कि विचार करते वक्त परलक्षी ज्ञान की स्थिति रहती है। परिस्थिति क्या ज्ञान की है विचार में? परलक्षी ज्ञान की। और तलाश करने में अपने आप को देखना पड़ता है तो ज्ञान की स्थिति स्वलक्षी हो जाती है। ये दिशा बदलने का जो कार्य है, कल रात के स्वाध्याय में चला अंतर्मुख और बहिर्मुख दो ही दिशा है, तो जब दिशा हमें बहिर्मुख छोड़नी है तो स्वाध्याय में भी परलक्षी ज्ञान की प्रवृत्ति को एक मोड़ देना पड़ेगा और हमें अंतरलक्षी स्वलक्षी ज्ञान की पद्धति में विचार के आगे जाकर के विचार उपरांत एक अवलोकन करना, जांच करना, तलाश करना, इस पद्धति में हमें स्वाध्याय करना चाहिए। ये जो सत्शास्त्र है उसमें आत्मा और आत्मा के परिणामों का विज्ञान है, और ये शब्द से उसका वर्णन किया है, तो शब्द को हम वाचक कहते हैं। और इसका विषय कौन है? वाच्य। शब्द का विषय मैंने वाच्य कौन है कि हमारी आत्मा और हमारे परिणाम, दो इसका वाच्य है। तो वाचक पर से अगर हम वाच्य तक नहीं जाएंगे तो हमारा जो स्वाध्याय है ये समुचित नहीं है, अनुचित है। तो अर्थ में क्या होता है कि वाच्य नहीं आता है, और रहस्यार्थ में वाच्य का ग्रहण होता है। यही रहस्य का एक दूसरा पहलू है। जैसे गुरुदेव दृष्टांत देते थे कि साकर एक शब्द है, और साकर का जिस शब्द का जो पदार्थ का नाम है वही ज्ञान में प्रत्यक्ष तौर से आ जाना कि ऐसी साकर होती है, ये साकर का सही ज्ञान है। ऐसे आत्मा शब्द है, इसका वाच्य हमारा स्वरूप है। अगर ज्ञान में हमारा स्वरूप नहीं आया तो ये शब्द निरर्थक हो जाएगा हमारे लिए। चक्खी है और देखी भी है, चलो चक्खी भी है और देखी भी है, तो वो दलील करना तो सीधी बात है, बहुत आसान है। लेकिन आचार्य महाराज उपयोग में है, तो क्या उपयोग तुमने नहीं देखा या उपयोग तुमने नहीं चखा? क्या शक्कर अपने मुंह में नहीं आवे तो वहां तक तो नहीं चखी है, लेकिन मुंह में आ गई इसका मतलब चखी है। अब ये उपयोग हमारे मुंह में हमारे अनुभव में नहीं है क्या? दूसरे के घर में उपयोग होता है, दूसरे के आत्मा में जानने का कार्य होता है, कहां होता है उपयोग? कहां होता है? तो ये देखा भी है और चखा भी है, है कि नहीं है? वजन नहीं आता है क्योंकि हमारी रुचि और जगह पड़ी है। ये तो गुरुदेव बार बार कहते हैं कि हमारी रुचि और जगह पड़ी है, इसलिए जहां रुचि है वहां वजन जाएगा, सीधी सादी बात है। अब हमारी रुचि और जगह पड़ी है उसमें हमें कितना नुकसान है ये बात हमको समझने की है। जीव का ऐसा स्वभाव है कि जहां नुकसान है वहां से हट जाएगा, उसका निषेध करेगा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको नुकसान समझ में आया ही नहीं। जैसे आप 2-3 साल का बच्चे को 100 रुपया की नोट खेलने के लिए दे दो कि देख इसमें ये पिक्चर लिखा है, देख इसमें ये सिंह है, वो आता है ना अशोक का 3 सिंह, देखो देख इसमें सिंह है, देंगे क्या 100 रुपये की नोट उसको? खेलने के लिए नहीं देंगे। क्यों? खेलते खेलते फाड़ देगा वो, तो क्या करेगा? उसको 2 रुपया की किताब पिक्चर जिसमें वो देंगे तो देख इसमें सिंह है, बाघ है, कौवा है, ये है वो है, लेकिन 100 रुपया वाले नोट देंगे नहीं, क्योंकि उसको फाड़ने में नुकसान है इसका पता नहीं है। ऐसा हमको पर रुचि में नुकसान है इसका पता नहीं है, सुनने पर भी। जिन लोगों ने सुनाई नहीं उनका तो बेचारे का क्या दोष, लेकिन हमको तो पिताजी की ओर से ये बात सुनने को मिली वारसा में। प्रभु भाई वारसा में मिली कि नहीं मिली? इतने भाग्यशाली है, इतने पुण्यशाली है, समझो कि ये चीज वारसा में मिली, ढूंढने को परिश्रम नहीं करना पड़ा, ये परिश्रम दूसरे को करना पड़ा लेकिन आप लोगों को नहीं करना पड़ा। फिर भी हमारे नुकसान को हम नहीं समझे तो इसका कोई इलाज नहीं है। और समझना चाहे तो नहीं समझे ऐसा बनने वाला नहीं है, लेकिन जान बूझ कर हम समझना नहीं चाहे तो क्या हो सकता है। जब जान बूझ कर ये बात हो गई ना, फिर हमको तो मिल गई, और फिर जान बूझ कर हम समझना नहीं चाहते हैं तो हमारा जितना बड़ा अपराध किसी का नहीं है। अनजाने में कोई जहर खाने में आ जाए तो भी मरता है आदमी, तो फिर जान बूझ कर खावे और नहीं मरे वो कैसे बनेगा? तो मर ही जाएगा। तो आपके यहाँ तो दूसरी तीसरी पीढ़ी तक तो ये बात मिल चुकी है। आपको मिली, इनको मिली, इनके बच्चे को भी मिल जाएगी। तो ये एक बहुत खुश नसीबी है कि ऐसी आत्मा का अनंत काल तक हित हो जाए, ऐसी बात आसानी से मिल जाती है। सब पुण्य लेकर के आए, लोकोत्तर पुण्य है। देखिए, पैसा मिल जाना कोई बड़ा पुण्य नहीं है, कोई सत्ता मिल जाना, राष्ट्रपति हो जाना या प्राइम मिनिस्टर हो जाना, ये कोई बड़ा पुण्य नहीं है। लेकिन आत्मा को सदा काल के लिए सुख शांति हो जाए, ऐसा मार्ग मिल जाना, ऐसा उपाय मिल जाना, ऐसा विज्ञान मिल जाना, ऐसा योग मिल जाना सत्शास्त्रों का, ज्ञानियों का, सत्संग का, ये सबसे बड़ा पुण्य है, लोकोत्तर पुण्य उसको कहते हैं। इधर तो हमारे यहाँ तो पैसा और सत्ता दो ही प्रकार का पुण्य है। अरे देवलोक का देव हो जावे ने, ये भी पुण्य इससे हीन है, इससे उच्च कोटि का ये पुण्य है। जहाँ इस प्रकार का सत्संग मिले, इस प्रकार का वाणी का योग मिले, सदगुरु मिले, ज्ञानी मिले, सत्शास्त्र मिले, ये ऐसा योग है। तो देखिए आप, ये करीब 600 करोड़ की आबादी है सारे विश्व की, जहाँ हम आवागमन कर सकते हैं, करीब 6 अरब है, 600 करोड़ मनुष्य है। इसमें इस बात की का योग कितने लोगों को है? बहुत कम है, मुट्ठी भर लोगों को इस बात का योग है। तो इसका पुण्य ही बहुत कम लोगों का है, इसका मतलब ये हो गया लाख लखपति करोड़पति अरबपति बहुत से हैं, लेकिन इस बात का योग मिले ऐसा इतनी इसकी संख्या बहुत कम है, ये बात है। तो इसका महत्व जो है वो अगर हमारी समझ में नहीं आता है तो हम क्या है कि जैसे एक धर्म एक रूढ़ी हो गई, रिवाज हो गया, उस धर्म मना लेंगे, धर्म के पर्व के दिन आएंगे कि चलो आज रोज तो पूजा करते हैं, ऐसे थोड़ी लंबी कर लेंगे, रोज तो स्वाध्याय करते हैं, भगवान भाई कराते हैं, इन दिनों में बाहर से किसी को और को बुला लेंगे, थोड़ी विशेषता होगी ना हमारी, तो बस हमारे हमने तो पर्व के दिन मना लिए। हम स्नान नहीं करेंगे इन दिनों में, आरती वगैरह में कुछ पैसे भी खर्च कर लेंगे, होगी विशेषता हमारे धर्म की है। ओग संगना में जहां भी जिस प्रकार का कार्य प्रणाली का होती है उस प्रणाली का में हम चल जाते हैं। ओग संगना में, ओग संगना में मैंने क्या कि हमारा हित अहित को, हमारी आत्मरुचि अनात्मरुचि को बिना समझे और उसमें बिना परिवर्तन किए बस जीवन भर ऐसे करते जाएं रूढ़िगत रूप से, तो ये जो लोक संगना है उससे कभी आत्महित होता नहीं है, ओग संगना से भी आत्महित होता नहीं है, ऐसा हो जाता है। इसमें से बाहर निकलना है, कुछ आगे जाना है। और ये परम अध्यात्म शास्त्र, समय सार जैसा परम अध्यात्म शास्त्र श्रीमद् राजचंद्र जी को मिला। आत्मसिद्धि शास्त्र के प्रवचन हम पढ़ते हैं इन दिनों में, जहाँ हमारे स्वाध्याय में भावनगर में मंदिर जी में 1995 के साल में, मैंने आज से करीब 51 साल के पहले हुए ये प्रवचन है, 52 साल के पहले राजकोट में गुरुदेव ने ये प्रवचन किए थे। और वो भी उसके किताब अपने यहाँ मिलती है, आत्मसिद्धि शास्त्र पर प्रवचन। तो उसमें गुरुदेव ने बोला कि आजकल हमारे हाथ में जो समय सार है, इसका कारण श्रीमद् राजचंद्र जी है। क्या बोले? आजकल समय सार जो हमारे हाथ में, इसका कारण श्रीमद् राजचंद्र जी है। उनके हाथ में समय सार आया और उन्होंने अपने परम श्रुत प्रभावक मंडल में इसका प्रकाशन करवाया और ये चीज गुरुदेव को मिली। गुरुदेव को जो समय सार मिला है, वो परम श्रुत प्रभावक मंडल श्रीमद् राजचंद्र अपनी उपस्थिति में जिस शास्त्र की प्रकाशन संस्था का निर्माण कर दिया, जो आज भी चलती है बंबई में और अगस्त में, और आज भी समय सार आदि प्रकाशन वहां से होता है, वहां से जो शुरू में हुआ वो गुरुदेव के हाथ में आया। और गुरुदेव के जो पूर्व संस्कार थे वो जागृत हो गए, वो स्वानुभव दशा में आ गए। तो उन्होंने ये पता चला कि ये श्रीमद् राजचंद्र जी का उपकार है कि समय सार का प्रकाशन उन्होंने किया था और हमारे हाथ में ये चीज आ गई। ये बात उन्होंने 52 साल पहले अपने प्रवचन में की है और हमारे स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट की संस्था ने उसका प्रकाशन किया है। इस बात का हमारे पढ़ने में वो बात आई। देखिए इतना गुरुदेव ने इस बात को खोल करके बोला है। तो ऐसा महान परमागम जो है, जो 2000 साल पहले दिगंबर आचार्यों ने जंगल में बैठ करके अपने स्वानुभूति के भीतराग रस में कलम को बोल बोल करके, क्या कहते हैं, डाल डाल कर डुबो करके ये शास्त्र लिखा है, ये ज्ञानियों की परंपरा में इसका उपस्थिति रह गई और वो बात आज हमको जानने में या समझने में मिलती है, तो इसकी कीमत बहुत है। कहने का ये अभिप्राय है कि इसकी कीमत बहुत है, ये रूढ़ी रिवाज की कोई चीज नहीं है, बहुत गंभीरता से है। हमारे आत्मा को हित के हित को मुख्य करके, और मुख्य करके मैंने क्या, फर्स्ट प्रायोरिटी दे करके, फर्स्ट प्रायोरिटी का मतलब कि सबसे मुख्य वो बात है और सब इससे गौण है। हमारा हित ही मुख्य है, इसके सिवा सब कुछ गौण है। इतनी मुख्यता दे करके अगर हम इस विषय में कुछ चलेंगे तो अवश्य हित हो सकता है, वरना हित होने का अनंत काल से नहीं बना है, ये मनुष्य पर भी चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा। समय हो चुका है, आगे बढ़ते हैं।